और व्याकरण में मैं आती हूँ। संस्कृत व्याकरण, आप लोग बहुत ही रुचिपूर्वक संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए आगे चलने का, पढ़ाने का थोड़ा मन किया है। तो अब आ जाइए आप व्यंजन संधि में। जिन लोगों ने व्याकरण की पुस्तकें जम्बूदीप हसनापुर से मंगवाई है, संभवतः सबके पास पुस्तकें पहुंच गई होंगी। नहीं पहुंची हों और आपको आवश्यकता है, पढ़ना है, तो आप जरूर जरूर मंगवाइए। कोई शुल्क नहीं है किसी प्रकार का, पढ़ना ही सबसे बड़ा आपका शुल्क है। तो अच्छे से पढ़िए और अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करें। संस्कृत व्याकरण माने अपने ज्ञान की नींव को मजबूत करना। तो अब व्यंजन संधि में आते हैं। व्यंजन संधि मतलब, अभी आप पहले स्वर संधि आपने पढ़ी, फिर प्रकृति भाव संधि पढ़ी। स्वर संधि में आपने पढ़ा कि स्वर का स्वर के साथ संयोग कराया गया, विग्रह करके और उनकी संधि कराई गई, तो वो स्वर संधि कही गई। प्रकृति भाव संधि में आपने जाना कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो ज्यों की त्यों रहते हैं और कुछ की संधि होती है, तो उसमें विशेष नियम उस जगह बताया है। अब है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले देखिएगा पेज नंबर 19 और सूत्र नंबर आएगा 68। उससे पहले जाने आप कि व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन का संश्लेष होना, मिलना और व्यंजन में उसका परिवर्तित हो जाना, इसको कहते हैं व्यंजन संधि। तो अब इसमें दिया है वाक प्लस अत्र, वाक प्लस अत्र और वाक प्लस जयति। देखिएगा कि वाक में का व्यंजन है और अत्र स्वर है, फिर वाक प्लस जयति दोनों ही व्यंजन है, क भी व्यंजन है, ज भी व्यंजन है। अच प्लस अत्र, ये एक स्वर है और एक व्यंजन है, और अच प्लस गच्छति, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। तो व्यंजन की स्वर के साथ और व्यंजन की व्यंजन के साथ संधि के लिए आपको शब्द दिए हैं। पहले वाक प्लस अत्र, वाक प्लस जयति, अच प्लस अत्र, अच प्लस गच्छति, षट प्लस अत्र, षट प्लस गच्छति, तत् प्लस अत्र, तत् प्लस गच्छति, ककुप प्लस आस्ति और ककुप प्लस जयति। हर एक शब्द को एक स्वर के साथ संधि करना और एक व्यंजन के साथ संधि करने की इसमें प्रक्रिया बता रहे हैं। इस प्रकार से ये दो दो शब्द हो गए जो कि इसमें लिखे हैं। वैसे तो पुस्तक के अंदर भी सब कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी आप इसको जब कॉपी में लिख लिख करके और उसकी सिद्धि करेंगे, यानी कि विग्रह करके और सूत्र के नियम के अनुसार संधि करेंगे, तो आपका विषय और अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो ये दो दो शब्द हैं। आप इसमें सूत्र लगता है, वर्ग प्रथमा पदांता,
वर्ग प्रथमा पदांता,
स्वर घोष वत्सु तृतीयान,
स्वर घोष वत्सु तृतीयान।
पढ़िए पूरा सूत्र, वर्ग प्रथमा पदांता, स्वर घोष वत्सु तृतीयान। ये सूत्र कहता है कि स्वर और घोषवान व्यंजनों के आने पर वर्ग का प्रथम अक्षर यदि पद के अंत में है तो वह अपने वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। देखो व्याकरण सही में देखो अब आई, यानी आपने घोषवान और अघोषवान ये संज्ञाएं पहले चैप्टर में पढ़ी हैं। तो घोषवान किसे कहते हैं, उसमें था वर्गाणाम प्रथम द्वितीय ससाचा घोषा, वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर ये क्या कहलाते हैं, अघोष। और स्वर और घोषवान, घोषवान से मतलब क्या लिया, तृतीय अक्षर। प्रथम और द्वितीय तो अघोष थे और तृतीय चतुर्थ अक्षर ये घोषवान। तो स्वर और घोषवान व्यंजनों के आने पर, माने जैसे अत्र है तो स्वर है और जयति है ये घोषवान है। आगे आगे का कहाँ है, ये पहले का तो एक एक अक्षर है। संधि किसके साथ होनी है, आगे वाले के साथ होनी है। तो स्वर और घोषवान, तो स्वर में लेना अत्र का आज स्वर्ग है, स्वर है, और वाक प्लस जयति जो है तो ज जो है वो घोषवान है। इस प्रकार से वर्ग का प्रथम अक्षर है जो, तो उसको पद के अंत में है तो अपने वर्ग का तृतीय अक्षर हो। अपने वर्ग का मतलब का है तो वो उसको ग हो जाएगा, क ख ग, उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाएगा। एक वर्ग में पांच अक्षर होते हैं, तो एक क वर्ग है, कवर्ग का जो है वो तृतीय अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाक को वाग हो गया, अत्र है तो वागत्र हो गया, वाग वाग प्लस अत्र, तो इसकी संधि कैसे होगी, व्यंजन मत्स्वरम पर वर्णम नयेत, व्यंजन मत्स्वरम पर वर्णम नयेत, इससे जो है उसमें गा में आ जुड़ गया तो वागत्र हो गया। ऐसे ही वाग जयति, इसमें भी का को गा हो गया तो वाग जयति। नीचे आप देखिए सब में अच्छे से लिखा हुआ है, वागत्र वाग जयति अजत्र, देखो वागत्र वाग जयति अजत्र अजगच्छति, इस प्रकार से इन शब्दों की सिद्धि हो गई। इस कौन से सूत्र से, ये वाला सूत्र एक प्रथम अक्षर को तृतीय अक्षर कर रहा है, और व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत ये क्या कर रहा है, संधि कर रहा है, तो आपके वाक प्लस अत्र जो है वो वागत्र बन गया, वाक प्लस जयति जो है वाक जयति बन गया, ऐसे अज प्लस अत अजत्र बन गया, अज प्लस गच्छति अज अज गच्छति बन गया। तो अब आपकी असली व्याकरण शुरू हो रही है कि इसको पहले जो संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग इस प्रकार से करना है। तो ये आपने इस 68 नंबर के सूत्र से जान लिया कि व्यंजन संधि की जो शुरुआत हुई है तो सबसे पहले प्रथम अक्षर को तृतीय अक्षर किया है आगे घोषवान और स्वर के आने पर। समझ में आ गया ना, घोषवान माने तृतीय अक्षर जो आया है जयति, तब उससे पहले वाले अक्षर को अपने ही वर्ग का तृतीय अक्षर हुआ, तो ये हो गए। अब उसके बाद कहते हैं कि वाक प्लस मति, अच प्लस मात्रम, षट प्लस मुखानी, तत् प्लस नयनम, त्रिष्टु प्लस मिनोति, इनकी कैसे संधि करेंगे, तो अगला सूत्र आता है 69 नंबर 69। पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा,
पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा,
पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा,
पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा।
अब ये क्या कहता है, सूत्र कहता है पंचम अक्षर के आने पर प्रथम अक्षर के स्थान में पंचम या तृतीय अक्षर वैकल्पिक है, जहां भी सूत्र में वा आता है, वा में आ की मात्रा, तो वहां समझो दो दो रूप बनेंगे, यानी विकल्प से उसमें बनते हैं। तो अब आप देखेंगे ये क्या है, वा प्लस मति है तो पंचम अक्षर है, मा पा फा बा भा मा यानी पवर्ग का अंतिम अक्षर, तो पंचम अक्षर के आने पर प्रथम अक्षर के स्थान पर, तो ये प्रथम अक्षर एक का प्रथम अक्षर है का, तो इसको उसी उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। तो कैसे, तो वा कहा तो पंचम अक्षर भी हो जाएगा और तृतीय अक्षर भी हो जाएगा, तो दो तरह के रूप बने। जब इसको पंचम अक्षर हुआ तो क्या हुआ, वांग मति, इसको नहीं लिखा इसमें, वांग मति माने कि हाँ लिखा है देखो, इसको का को पंचम अक्षर वांग और मति, ये पंचम अक्षर था तो उसको उसी वर्ग का था, का ही पंचम अक्षर हो गया तो वांग मति बन गया, या वाग मति जो का को पहले तृतीय अक्षर हुआ हो रहा था उसी वर्ग का, तो वाग मति और वांग मति, इससे इस सूत्र से कई जगह इस सूत्र काम आएगा, पंचम अक्षर अथवा तृतीय अक्षर हो जाता है। तो जब पंचम अक्षर हुआ तो वांग मति बन गया, जब तृतीय अक्षर हुआ तो का ख गा वागमती हो गया। ऐसे ही अच प्लस मात्रम है, अच प्लस मात्रम तो ये भी मात्रम ये पंचम अक्षर है, पवर्ग का पंचम अक्षर है, तो इसको भी इस सूत्र के द्वारा अब चा को अंतिम अक्षर हो गया, य च छ ज ज य अई मात्रम या फिर अज मात्रम, ऐसा आपको जानना है। अब ये व्यंजन संधि है, क्योंकि इधर भी व्यंजन, दोनों साइड में व्यंजन को व्यंजन के साथ ही मिलाकर के संधि की गई है, तो तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर विकल्प से दोनों होते हैं, तो वांगमति या वागमति, अमात्रम अजमात्रम, ऐसे ही आगे षण मुखानी यानी षट मुखानी था, षट प्लस मुखानी, तो ट ठ ड ड ण षण्मुखानी हो गया या षड्मुखानी हो गया। और फिर तत् प्लस नयनम था, इसको लिखा नहीं है, ले लिख लो। तत् प्लस नयनम तो तद नयनम या तन नयनम। तो संधि सहित पढ़ने में देखो, कहीं भी जब आप श्लोक पढ़ें, सूत्र पढ़ें, तो उसको जैसा है वैसा ही पढ़ेंगे। उसके बाद जब उसका अर्थ करना है, जैसे तन नयनम, तत् प्लस नयनम यानी वह नयन, तो उसको तन निसर्गादधिगमाद्वा जैसे आप पढ़ते हैं ना सूत्र में, ये संधि आपको इन चीजों को पढ़ने में ही काम आएगी। तन निसर्गादधिगमाद्वा, तो जब उसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तत् माने तत् में ता है, और निसर्गात तो ना आगे पंचम अक्षर है तवर्ग का, तो इधर ता को भी पंचम अक्षर हो गया, तन निसर्गात डबल ना हो गए, दधि गमाद्वा। ऐसे ही षण्मुख तन नयनम हो गया और तद नयनम भी हो गया। त्रिष्टुप प्लस मिनोति, तो त्रिष्टुम मिनोति, पाप को एक बार पंचम अक्षरों का मां हो गया, तो त्रिष्टुम मिनोति हो गया। हाँ देखो, तत् प्लस नयनम है तो तन नयनम बन गया, इस त को ना हो गया तो तन नयनम बन गया, और जब ना नहीं हुआ तो तृतीय अक्षर से तद नयनम। इसी प्रकार से त्रिष्टुप प्लस मिनोति में एक बार पाकुमा हो गया तो त्रिष्टुम मिनोति, और एक बार त्रिष्टुप मिनोति। इस प्रकार से इन दो सूत्रों के द्वारा व्यंजन संधि की आपकी शुरुआत हो गई है। अब इसी प्रकार से जो चीज आप पढ़ते हैं ना, इसको आप एक दूसरे को अगर पढ़ा भी दें, या फिर उसको बार बार अभ्यास करें, उस कॉपी में लिख लिख करके उसको अभ्यास करने से बहुत ही सरलता से आपको संधि प्रकरण समझ में आएगा। तब आपके ज्ञान के रास्ते आगे और खुलेंगे, ताकि पढ़ने में भी और अर्थ को समझने में भी आपको सहूलियत हो जाएगी।